आम आदमी की खास कहानी में आज कहानी उस एक इंसान की, जो कभी रहा तो करता था सैन फ्रांसिस्को में, लेकिन ले आया विदेशी सिलिकॉन वैली भारत के अपने गांव में। भारत के शानदार मंदिरों के लिए तमिलनाडु का नाम लिया जाता है। पश्चिमी घाट से घिरा तमिलनाडु में बसा तेनकाशी एक छोटा सा शहर पर बहुत ही खूबसूरत है। इसे दक्षिण भारत का काशी भी कहा जाता है। यह नाम शायद इसलिए भी दिया गया है क्योंकि यहां पर भगवान शिव को समर्पित काशी विश्वनाथ मंदिर है। यहां बेहद खूबसूरत कोल्टरन फॉल्स, जो कि छित्तर नदी पर स्थित है, औषधीय पौधों से गुजरने के कारण इस झरने के पानी में औषधीय गुण पाए जाते हैं। कोटरालम में अलग अलग 9 झरनों का पानी तीव्रता के साथ गिरता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है। चारों ओर हरियाली और उन हरे भरे धान के खेतों के बीच से सुबह सवेरे ही साइकिल चलाते हुए गांव की अत्यंत साधारण सी वेशभूषा में एक व्यक्ति प्रतिदिन दिखाई पड़ता है। यह व्यक्ति सांझ ढले गांव के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने का आनंद भी लेता है। वैसे देखने सुनने या पढ़ने में या एक सामान्य या फिर अत्यंत साधारण सी बात लगती है, लेकिन जब साइकिल चलाते चलाते उन्हें जोहो कॉरपोरेशन के ऑफिस में जाते और रुकते देख कुछ आश्चर्य होने लगता है, तो फिर मन में उत्सुकता बढ़ने लगती है उन्हें जानने की। यह साधारण सा दिखने वाला असाधारण व्यक्ति कौन है? यह साइकिल से चलाता हुआ इंसान जो कि शाम को गांव के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता है कौन है? और फिर पता चलता है कि यह असाधारण व्यक्ति है श्रीधर वेम्बू, जोहो कॉप कंपनी के फाउंडर और सीईओ श्रीधर वेम्बू, जिन्हें वर्ष 2020 में फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों में 55वां स्थान दिया और जिनका नेटवर्थ $2.5 बिलियन है। अमेरिका जाकर काम करना और फिर वापस अपने वतन भारत लौटकर देश और देशवासियों की सेवा करना, ये कहानी किसी हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता की नहीं है, बल्कि तमिलनाडु के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे और पले बड़े श्रीधर की है। उनके पिता हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर थे। अपनी शिक्षा सरकारी सहायता से प्राप्त स्कूल से पूरी करने के बाद श्रीधर ने IIT मद्रास से उच्च शिक्षा हासिल की। 1989 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी न्यूजर्सी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhD पूरी की। साथ साथ पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में दिलचस्पी के कारण जापान, सिंगापुर और ताइवान जैसे बाजारों की सफलता के बारे में खूब अध्ययन किया। वर्ष 1994 में सैन डियागो कैलिफोर्निया में स्थित कॉलकॉम कंपनी में बतौर वायरलेस सिस्टम इंजीनियर काम किया। सैन फ्रांसिस्को बे एरिया के आसपास अपना समय व्यतीत करने वाले श्रीधर का एक बहुत ही खूबसूरत सपना था, सिलिकॉन वैली को भारत के गांव तक पहुंचाना। श्रीधर ने वर्ष 1996 में नेटवर्क इक्विपमेंट प्रोवाइडर एडवेंट नेट की स्थापना की। वर्ष 2009 में कंपनी का नाम बदलकर जोहो कॉप रखा, जो अब सॉफ्टवेयर कंपनी सर्विंग नेटवर्क इक्विपमेंट वेंडर से इनोवेटिव ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोवाइडर के रूप में परिवर्तित हो गई। आज जोहो क्लाउड बेस्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉल्यूशन और 40 से ज्यादा एप्स के साथ साथ ऑनलाइन अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी उपलब्ध करवाती है। श्रीधर का सपना साकार हुआ जब जोहो डेस्क नाम के कस्टमर सर्विस सॉफ्टवेयर का निर्माण दक्षिण भारत के माथालम पलाई नाम के छोटे से गांव में किया गया। उनका हमेशा यह विजन रहा कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हमें अर्बन हब्स की आवश्यकता नहीं है, अभी तो ये सामुदायिक विकास के जरिए ग्रामीण भारत की तस्वीर भी बदल सकती है। जोहो कंपनी का मुख्यालय चेन्नई में है, लेकिन तेनकासी जैसे छोटे से गांव में सैटेलाइट ऑफिस खोलने का फैसला औरों के लिए चकित कर देने वाला था। इस बारे में योर स्टोरी को दिए गए एक इंटरव्यू में श्रीधर बताते हैं कि जब कंपनी में चेन्नई से बाहर बसे लोगों की बहाली हुई, तब विचार आया कि क्यों ना हम गांव से शहर की ओर होने वाले माइग्रेशन के ट्रेंड को ही बदल दें। हमें पश्चिमी तटीय क्षेत्र में करीब 100,000 की आबादी वाले ऐसे गांव की तलाश थी जहां मूलभूत सुविधाएं हों, और हमें एक बहुत ही सुंदर जगह तेनकासी दिखाई पड़ी। यहां किराए पर एक छोटा सा ऑफिस लिया और फिर पास के माथलम पराई गांव में एक पुरानी फैक्ट्री खरीदकर उसे परिसर में बदल दिया। आज हमारे पास तेनकासी में करीब 500 कर्मचारी काम करते हैं। श्रीधर ने यहाँ हाईस्कूल और डिप्लोमा छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जोहो स्कूल ऑफ लर्निंग की भी शुरुआत की। यहाँ वे खुद भी पढ़ाने आते हैं। 2004 में जोहो यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई, जिसे आज जोहो स्कूल्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ 2 साल के कोर्स के लिए कोई भी फीस नहीं ली जाती, बल्कि 10,000 रुपये स्टाइपेंड देकर छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। राजेंद्रन दाना दपानी, डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी जोहो कॉप, जो कि जोहो स्कूल ऑफ लर्निंग के प्रेसिडेंट भी हैं, वे बताते हैं कि हम छात्रों की दृढ़ इच्छा शक्ति को देखते हैं। वी लुक फॉर स्टूडेंट्स हु हैव फायर इन देयर बेली। डिग्री से ज़्यादा स्किल्स को महत्व देते हैं। 6 छात्र और 2 प्रोफेसर से शुरुआत कर आज 800 से ज़्यादा युवा प्रशिक्षित होकर जोहो कॉप में कार्यरत। हमारे लिए तारीफ और फख्र की बात यह है, इन छात्रों में जोहो का सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल अलीम भी है, जो आज एक प्रोग्रामर है। श्रीधर का कहना है कि गांव में प्रतिभाओं की कमी नहीं होती, लेकिन यहां रोजगार के अवसर नहीं होते। ऐसे में युवा शहर की ओर पलायन करते हैं। श्रीधर की कंपनी जोहो ने इसी ट्रेंड को पलट दिया। वे दुनिया के सामने यह मिसाल रखना चाहते हैं कि यह बिल्कुल संभव है कि गांव के युवा वर्ग को शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाए, जिससे वे यहीं रहकर अपना जीवन यापन कर सके। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक तेनकासी को जिला का दर्जा दिलाने में जोहो कंपनी की अहम भूमिका रही है। सामुदायिक विकास में श्रीधर की किस कदर भूमिका रही है, इसे चेन्नई स्थित इकोनॉमिक कंसल्टिंग ग्रुप के अध्ययन से समझा जा सकता है। इस स्टडी में तेनकासी में कई क्षेत्रों में पॉजिटिव इम्पैक्ट का पता चला है। इनमें ओवरऑल इनकम, महिला सशक्तिकरण, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, रोजगार और सामुदायिक विकास आदि शामिल है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए आवास सुविधाएं तो दी ही, साथ ही सबने खेती में भी निवेश करना शुरू कर दिया है। जोहो द्वारा खेती की पहल स्थानीय किसानों के बीच जैविक खेती के बारे में जागरूकता पैदा कर रही है, साथ ही वर्मो कंपोस्ट का उत्पादन भी होने लगा है। आज जोहो के 2 रूरल ऑफिस हैं, एक तेनकासी और एक दूसरा आंध्र प्रदेश में स्थित रैनिंगगुंटा, जहां 500 कर्मचारी हैं, और भविष्य में बहुत जल्द इन नॉन अर्बन इंडिया के ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या बढ़ने वाली है। शैलेश कुमार दवे जोहो के को फाउंडर और इंजीनियरिंग हेड का कहना है कि श्रीधर दूरदर्शी हैं, बहुत जल्दी ट्रेंड्स को भांप जाते हैं। पैंडेमिक के दौरान सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित करने के 2 हफ्ते पहले ही उन्होंने अपने सभी ऑफिस को बंद कर दिया, जिससे उनके सभी कर्मचारी बिना किसी परेशानी के अपने अपने घर पहुंच गए। जोहो ने पहला सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूनिकॉर्न होने का सम्मान पाया है। वर्ष 2019 में फोर्ब्स ने $1.83 बिलियन में श्रीधर वेम्बू की 88% स्टेक की वैल्यू दर्शाई है। जोहो यह दावा करती है कि उनके ऐप्स के ग्लोबली 50 मिलियन यूजर्स हैं। आत्मनिर्भर भारत की यह सोच, जो श्रीधर का शुरू से एक विजन था, उनके कारण ही 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्रीधर वेम्बू को पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। इन ऊंचाइयों को छू लेने के बाद भी श्रीधर वेम्बो की दिनचर्या और व्यक्तित्व में बहुत ही सरलता है। अमेरिका से लौटने के बाद भी उन्होंने अपने आप को बहुत ही सुगमता से ग्रामीण परिवेश में ढाल लिया है। उनके दिन की शुरुआत प्रातः 4 बजे होती है, जब वे US ऑफिसेस कॉल करते हैं। 6 बजे वे रोजाना सैर करने निकल जाते हैं। पक्षियों के कलरफ का आनंद लेते हुए हरे भरे खेतों के बीच उन्हें कई बार नाग देवता के दर्शन भी हो जाते हैं। साथ ही कभी कभी गांव के तालाब में वे अब तैर भी लेते हैं। फिर सुबह का नाश्ता, अपने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स और कोर्ट्स का रिव्यू करके कस्टमर से बात करने के बाद बारी आती है उस काम की, जो उनके पुरखे अपना भरण पोषण करने के लिए करते थे। अपने खेतों की सैर, जहां धान, टमाटर, भिंडी, आम, तरबूज, नारियल आदि उगाए जाते हैं। श्रीधर कहते हैं कि मैं अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहता हूं, और ऐसी जिंदगी मुझे बेहद पसंद है, जहां किसी के साथ तुलना या कंपैरिजन ना हो। मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरे पड़ोसी के पास में फरारी या आईफोन है, ऐसे प्रश्न मेरी चिंता का कारण ना बने, क्योंकि मैं अपने जीवन में सिंप्लिसिटी को महत्व देना चाहता हूं। शाम होते ही श्रीधर फिर से लंबी सैर को निकल पड़ते, यह उनके चिंतन और मनन का समय होता है। शायद यही वह वक्त है जब श्रीधर वेम्बू के हृदय का वह कोना सैयद अहमद अफजाल के ये शब्द बुदबुदाता हो, मैं अकेला ही नहीं निकला सफर पे, मेरा हौसला भी संग हो चला है।